आज़ाद तो जरूर हुए थे हम, राजनीतिक आज़ादी हमको मिली थी, लेकिन मुकम्मल हम इस देश के मालिक हुए आज के दिन 26 जनवरी 1950। जो प्रजा थी वो राजा बने, हम मालिक बने, लेकिन इतने दिनों के बाद भी जो आम आदमी है वो अपने को मालिक होने का एहसास ही नहीं समझ पाया इस देश। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसी कमी के वजह से, क्योंकि जो राजनीति होनी चाहिए थी इस देश में, जो ये नागरिक बोध कराती लोगों को कि भाई आप मालिक हो, आप इस देश के राजा हो, जनतंत्र अब लागू है, इस देश में संविधान लागू है, और बाकी जो ये सब लोग हैं वो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये इस राजनीति को करने वाले लोग शुरू के दिनों में जो स्वतंत्रता आंदोलन से आए थे वो कुछ दिनों तक तो रहे, लेकिन उसकी मुख्य धारा जो थी वो कांग्रेस थी। और कांग्रेस के अंदर जब धीरे धीरे ये चीज़ें मरती गई और जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां थी उसमें जो सबसे ख़राब बात ये हुई कि हमारे जो सबसे क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, तो कम्युनिस्ट लोगों ने तो उसी दौर में कहा कि आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, और फिर तेलंगाना जैसे संघर्ष हुए इस देश में, वो एक अलग पार्ट था। जो सोशलिस्ट लोग उसमें भी जो सबसे बड़े बड़े जो स्टार लीडर थे हमारे देश के, जिनका एक मतलब जनता में बहुत विश्वास था, वो 52 के चुनाव में जब हारे हैं बुरी तरीके से कांग्रेस के ग्लैमर में, या चूँकि प्रतिनिधित्व देश की आज़ादी का कांग्रेस कर रही थी, तो वो लोग बहुत पीछे हुए। उसमें जयप्रकाश नारायण हैं, नरेंद्र देव हैं, जिनसे बहुत अपेक्षाएं थी, लोहिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोग इस तरीके से बाहर हो गए। और फिर ये परिस्थितियां बनती नहीं और देश भर में इस तरह की मतलब भावनात्मक मुद्दों की राजनीति से देश की जो मूल समस्याएं थी उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाते 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 आज भी हम ऐसे मुकाम पे हैं कि जो अभी भाभी भाई ने जो जिक्र किया कि मुझे कल एकाएक हम लोग जब एक साथी हमारे बातचीत कर रहे थे और हम लोग यही बातचीत कर रहे थे जब जम्मू में इन लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो 94 में मैं उस समय जब जोशी जी श्रीनगर जा रहे थे एकता यात्रा लेके, तो मेरी एक बहन रहती हैं, मतलब बहनों ही रहते हैं एयरफोर्स में, उस समय वो उधमपुर में थे और क्वार्टर्स वगैरह नहीं मिले थे, तो जम्मू में ही उन बच्चों के साथ मैं भी अपने भांजों के साथ था। तो मैंने देखा कि मतलब देश भर में जिस तरीके का ये कर रहे थे वहाँ, अब ये मतलब पूरा प्रोटेक्शन मांग रहे हैं एयरफोर्स से, एयरफोर्स का जहाज चाहिए उनको, एयरफोर्स के सैनिक चाहिए, आप पूरे देश में तो एक मतलब जोश भर रहे हैं कि हम श्रीनगर चल रहे हैं, लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, लेकिन जम्मू जाने के बाद जो है जोशी जी की जो हालत हो रही थी, क्योंकि एयरफोर्स होने के नाते मैं अंदर से देख रहा था, वहाँ थोड़ा BRDO में वहाँ रहने थे और लोग जानते थे कि पारिवारिक सदस्य हैं, और वॉलीबॉल वगैरह खेलने में भी जाता था, वो सब वहाँ के बड़े बड़े सर्जेंट कह रहे थे कि बताइए देखो ये देश भर में लोगों को भड़का के आ रहे, यहाँ कह रहे कि अब सेला नहीं ले जाएगी तो मैं जाऊँगा ही। तो ये इन नेताओं की असली हकीकत है। और जो सबसे ख़राब बात है कि वो लोग इस वक्त मतलब ऐसे मुद्दे जब देश में भुखमरी है, गरीबी है, और सबसे बड़ा सवाल कि भ्रष्टाचार, मतलब हमारी जितनी लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से खून की तरह चाट रहा है, वैसे समय में एक मतलब कृत्रिम राष्ट्रवाद का मुद्दा उठा के और ख़ास तौर से कश्मीर को टारगेट करके, जबकि देश के बहुत सारे ऐसे जगह हैं, गांव हैं, व्यक्ति हैं, घर हैं, नागरिक हैं जो तिरंगा को पहचानते तक नहीं, और हम आप सब जानते हैं कि जहां बाबा आमटे के ये बड़े वाले बेटे प्रकाश जी गढ़चिरौली में जहां काम करते हैं, उन जंगलों में लोग अभी भी मतलब जो इनके संपर्क में हैं प्रकाश जी के, वो तो कुछ कपड़े महिलाएँ कुछ अपने कंधे वगैरह पे डालती हैं हस्तल पे, और पुरुष तो सिर्फ अपने ये कमर पे कपड़े बांधते हैं, उनसे अब हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो इस तरह के हमारे राष्ट्र ध्वज को पहचानते होंगे कि तिरंगा क्या है, जिसने पूरा कभी कपड़ा ही न देखा हो। तो ऐसे भी लोग देश में हैं, लेकिन ये एक कृत्रिम तरीके से राष्ट्रवाद की जो भावना पैदा की जा रही है ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि इनका उस राष्ट्रवाद से अब तो बिल्कुल नंगा एकदम हो गया है कि कोई लेना देना नहीं है। ये असीमानंद जी के बयान के बाद जो इकबालिया बयान उन्होंने दिया है अजमेर मालेगांव और मतलब उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि दो संप्रदायों की घृणा से बेहतर है कि दो मनुष्य एक साथ मिल के रहें, और उनको ये बात तब महसूस हुई जब वो हैदराबाद के चंचलगुंडा जेल में बंद थे और उसी जेल में कलीम नाम का स्कूटर मैकेनिक पिछले 1.5 साल से मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के आरोपी के रूप में बंद था और उसके साथ मिलने जुलने सेवा भाव से जब उनको मतलब रोज उससे मिलते थे तो उनको ये अंदर से इतनी ग्लानी होती थी कि देखिए बम तो मैंने फोड़ा और ये बिगड़ा आदमी जो है गरीब आदमी जो है। अब रोज वो आमने सामने पढ़ते थे और अंततः उस बात को वो फेस नहीं कर पाए और उन्होंने दो बहुत बढ़िया पत्र भारत के राष्ट्रपति महोदया को और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को लिखा है कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो गुनाह किया है उसमें मुझे फांसी की सजा होगी, तो